नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विभिन्न समस्याओं की चर्चा करते हैं, उन समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए उसके समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। एक पहलू जिसे हम सब शायद भूलते जा रहे थे, वो पहलू था आध्यात्मिक पहलू, और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हम उस आध्यात्मिक पहलू को इस कार्यक्रम में जोड़कर चल रहे हैं। पिछले कई एपिसोड में हम सब ने चर्चा की विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं पर और उनके समाधान तक पहुंचने का प्रयास किया। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया, बहुत अच्छा रिस्पांस विद्यार्थियों की तरफ से हमें प्राप्त हुआ है, और इसके लिए आप सबका हम धन्यवाद अदा करते हैं कि आपने इतना सुंदर रिस्पांस दिया। अब आज से हम शुरू करने जा रहे हैं युवाओं की समस्याओं को। युवा वर्ग जो हमारे देश की बहुत बड़ी संपत्ति है, और युवा किसी भी राष्ट्र की बहुत बड़ी संपत्ति होती है। युवा वर्ग यदि सही दिशा में चले, युवा वर्ग यदि अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करे, तो निश्चित रूप से कोई भी राष्ट्र बहुत ही संपन्न, बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही महान बन सकता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। यदि हम संसार की विभिन्न क्रांतियों की ओर देखें, तो सभी क्रांतियों का मूल युवा ही रहा है, उसका आधार रहा है। युवा के बिना कोई भी परिवर्तन अब तक संभव नहीं हुआ है। तो क्यों ना युवा वर्ग जो आज विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है, हमने सोचा उनकी समस्याओं का निदान करते हुए एक सुंदर समाधान तक उन्हें लेकर के चलें। इसीलिए हम इस सुंदर कार्यक्रम में अब युवाओं की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, और हमेशा की तरह हमें समस्या से समाधान की ओर ले चलने के लिए, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। रता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है।
थैंक यू।
रता जी, युवाओं का देश है भारत, और विभिन्न प्रकार से हम देखते हैं कि युवा वर्ग हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रहा है, आगे आ रहा है, और जो विकास हम देख रहे हैं, समाज की जो स्थिति देख रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान युवाओं का उसमें है। लेकिन एक विशेष चीज देखने में आती है, यदि हम देखें युवाओं को, तो कि अधिकांश युवा अपने जीवन में लक्ष्य नहीं बना पाते, लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर पाते। वो ये समझ नहीं पाते कि मैं अपने जीवन को किस दिशा में ले जाऊं, इधर ले जाऊं, इधर ले जाऊं, कहां ले जाऊं। संभव है कि उन्हें मार्गदर्शन भी प्राप्त नहीं होता। तो आज हम विशेष करके चर्चा करेंगे कि लक्ष्य कितना इंपॉर्टेंट है।
वेरी गुड।
माता जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या सचमुच लक्ष्य बनाना जरूरी है, या बिना लक्ष्य के भी किसी का जीवन चल सकता है?
देखिए, जैसा आपने कहा, यह सत्य है कि युवक हमारे देश की शान है
जी।
हमें उन पर गर्व है। उनमें से ही कई युवक महान वैज्ञानिक बनकर संसार को कुछ अद्भुत चीज देंगे
जी।
इनमें से ही कुछ महान युवक बड़े बड़े इंजीनियर्स बनकर कुछ नई चीजें पैदा करेंगे, क्रिएट करेंगे। इनमें से ही कुछ बहुत ही श्रेष्ठ तरह के नेता बन सकते हैं आगे चलकर, और अभिनेता भी। तो वास्तव में युवा काल मनुष्य का एक बहुत सुंदर काल होता है, जिसमें वो अपने भावी जीवन का निर्माण करता है। और जैसा आपने कहा, लक्ष्य का सचमुच बहुत महत्व है। लक्ष्य विहीन जीवन तो वैसे ही है जैसे पहले समय में बिना ब्रेक के साइकिल
जी।
और आजकल
बिना ब्रेक के
बहुत सारी गाड़ियां जो ढलान पे चल रही हो
जी।
और ब्रेक ना हो तो एक्सीडेंट भी होगा, गाड़ियां भी टूटेंगी, खुद को भी चोट लगेगी। इसलिए लक्ष्य युक्त जीवन जीना
जी।
इससे ही हमारा समय, हमारी एनर्जी, हमारी मन, हमारी बुद्धि, धन सब सफल होता है। अगर जीवन का कोई लक्ष्य न हो और हम चलते जा रहे हों, हमें ये पता न हो कि किधर जाना है, तो हमारा चलना हमें थकाएगा भी और मंजिल पर हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे।
ये तो ऐसा हो जाएगा प्रताप जी, जैसे सागर में कोई कश्ती हो और उसके नाविक को ये पता ही ना हो कि उसे किस दिशा में जाना है।
हाँ, फिर उसे तूफान जिधर चाहे ले
जाएं,
लहरें अपनी चपेट में लेकर चाहे उसे नष्ट भी कर दें, और चाहे उस जहां उसे पहुंचना चाहिए था उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में उसको ले जाकर उसके जीवन में हताशा, निराशा, पूरी तरह से भर दें।
जी 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 मान लीजिए जैसे हम किसी भी बस या ट्रेन में भी तो नहीं बैठते जिसके गंतव्य का हमें पता नहीं होता है, और यदि हम बैठ जाते हैं तो हम कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, या ये कह लिया जाए कि कोई बेतहाशा भागा जा रहा हो लेकिन उसे ये ही ना पता हो कि वो कहाँ भागा जा रहा है, इसलिए एक लक्ष्य का निर्धारण बहुत आवश्यक हो जाता है। तो प्रता जी कई बार सपने और लक्ष्य दोनों में अंतर करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है युवाओं के लिए। बहुत बार सपने तो प्रायः सभी देखते हैं, सभी युवा देखते हैं कि मैं ये करूंगा ये करूंगा ये बनूंगा, मेरे जीवन में ये होना चाहिए आदि आदि इत्यादि। हर एक सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, हर एक धोनी जैसा बनना चाहता है, हर एक जो हमारे स्टार हैं चाहे वो शाहरुख खान है अमिताभ बच्चन है उन जैसा बनना चाहता है, लेकिन उन्होंने ऐसा बनने के लिए कितनी मेहनत और परिश्रम की शायद इसके पीछे वो नहीं देखना चाहता।
हाँ, इसके पीछे एक्चुअली ड्रीम्स के साथ साथ लक्ष्य भी था उनके सामने।
जी,
और यही कि ड्रीम तो हर व्यक्ति बहुत अच्छे अच्छे देखता है और विशेषकर युवक, उनके मनपसंद जो भी एक्टर हो या खिलाड़ी हो या कोई वैज्ञानिक हो या नेता हो, वो वैसा बनने के स्वप्न तो वो हमेशा ही देखते रहते हैं। लेकिन लक्ष्य के साथ एक और चीज भी जुड़ी होती है, एक सुंदर प्लानिंग, वैसी मेंटलिटी बनाकर चलना, वैसी ही बुद्धि को लेकर चलना, वैसे ही संसाधन जुटाना, इसलिए लक्ष्य कहीं बेहतर है स्वप्नों से। लेकिन पहले मनुष्य ड्रीम अवश्य देखेगा, देखना आवश्यक है, लेकिन ड्रीम को यदि वो अपने सुंदर लक्ष्य में बदल ले तो ये लक्ष्य उसे वहीं ले जाएगा जहां वो जाना चाहता है।
मतलब केवल सपने ना देखता रहे, जैसे हमारे यहाँ कई बार कहते हैं कि दिवा स्वप्न, कि तुम तो दिन दहाड़े सपने देख रहे हो और कर कुछ नहीं रहे हो। और किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जो व्यक्ति सपने देखता है वो सो नहीं पाता, क्योंकि वो अपने सपने को पूरा करने में लग जाता है। तो केवल सपने ना देखें लेकिन लक्ष्य बनाए, अर्थात कुछ ठोस उसके पीछे प्लानिंग अवश्य उनकी होनी चाहिए।
ये बात हम पहले से ही शुरू कर देते हैं
जी,
कि जब मनुष्य एक लक्ष्य बनाता है सुंदर
जी,
और वो लक्ष्य भी बहुत दृढ़ता के साथ बनाए, सुन सुनकर नहीं, ये नहीं उसने कहा तो ये लक्ष्य बना लिया, कल उसने दूसरा कह दिया तो लक्ष्य बदल दिया। अगर एक निश्चित लक्ष्य मनुष्य बना ले, चाहे वो एक साल के लिए बनाए या पांच साल के लिए बनाए या पूरे जीवन के लिए बनाए, वैसे छोटे छोटे लक्ष्य बनाना अति उत्तम होता है। तो क्या होगा कि ब्रेन की समस्त शक्तियां, बल्कि अगर वो स्पिरिचुअल भी है तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां उसको मदद करने लगेंगी उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। मान लो उसके पास पैसा नहीं है तो ये सब शक्तियां पैसा जुटाने लगेंगी। मान लो उसके कोई साथी नहीं है तो उसको साथी तैयार कराने लगेंगी। जैसी अपॉर्चुनिटी उसे चाहिए, जैसे खुले द्वार उसे चाहिए उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, ये ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां वो द्वार खोलने लगेंगी। इसलिए लक्ष्य का दृढ़ता पूर्वक निर्धारण करना परम आवश्यक है।
जैसे किसी महापुरुष ने कहा भी है भ्राता जी कि जितना हम सोचते हैं पाने का या जो हमारा लक्ष्य होता है उतना ही हमें मिलता है। यदि हमने छोटा सोचा होगा तो हमें छोटा ही मिलेगा, और यदि हम बड़ा सोचेंगे कि हाँ ये मेरा लक्ष्य है तो हमें वो मिलेगा। और किसी ने ये भी बहुत खूब कहा है कि अपना लक्ष्य हमेशा सितारों पर चढ़ना बनाओ, ताकि वहां तक नहीं भी पहुंच पाए तो कम से कम चांद तक तो पहुंच ही जाओ।
बिल्कुल, ये ठीक बात है। लक्ष्य हमारा बहुत ऊंचा हो, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि कई युवक लक्ष्य बना लेते हैं और सोचते हैं जो प्राचीन काल में लोगों ने कहा है, फिलोसोफर्स ने कहा है, चिंतकों ने कहा है, वो तो कुछ हो नहीं रहा। तो इसमें कहीं ना कहीं उस लक्ष्य को निर्धारण करने में, उस तक पहुंचने में जो मनुष्य को दृढ़ता होनी चाहिए उसमें वो मनुष्य कमी रख देता है। देखिए, दोनों तीनों चीजें हैं, लक्ष्य निर्धारित करना वो भी दृढ़ता के साथ एक ही लक्ष्य
जी,
दूसरी चीज है उसकी सुंदर प्लानिंग बनाना, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है उस प्लानिंग को फॉलो करना, यानी हार्ड वर्क करना उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए।
बहुत सुंदर। मतलब यदि स्वप्न और लक्ष्य को हम यदि थोड़ा सा इनमें भेद करना चाहें तो यही होगा कि स्वप्न के साथ कोई भी प्लानिंग नहीं होती, हार्ड वर्क नहीं होता, डेडिकेशन नहीं है, लेकिन यदि हमने लक्ष्य बनाया है तो ये सभी चीजें उसमें शामिल होंगी, डिसिप्लिन भी होगा, डेडिकेशन भी होगा और डिटर्मिनेशन भी होगा, होगा और साथ ही एक डेडलाइन भी वो बनाएंगे कि हमें इस समय तक अपने लक्ष्य को हासिल कर लेना है। भ्रत जी, एक चीज और, कहीं ना कहीं जो युवाओं में कह लें या किसी भी वर्ग में कह लें जो आता है, एक आपने शास्त्रों की बात कही तो वो बात मेरे ध्यान में आ गई। किसी ने कहा है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो जब दाता राम देने वाला बैठा हुआ है तो हम क्यों ना मस्ती से अपना जीवन।
देखिए, ये तो जिसने कहा वो खुद दास था, इसलिए जिन्हें दास बनना हो वो तो भाग्य के भरोसे अपने भविष्य को छोड़ दें, लेकिन जिन्हें राजा बनना है, माना कुछ करना है, जिनका भावी लक्ष्य बहुत सुंदर है
जी,
उनको तो एक सुंदर लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा और उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा।
तो एक केपीएम कल्चर जो ज्यादातर भ्राता जी आजकल चला आ रहा है कि खाओ पियो मौज करो, बाकी कल कौन देखता है और कल क्या होगा वो देखा जाएगा वाली बात है। गीत भी है कि देख सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। तो यदि इस सिद्धांत पे चलते हैं कहीं ना कहीं भविष्य में थोड़ी उदासी, निराशा।
हाँ, केपीएम में ये है, खाओ पियो तक तो ठीक है, लेकिन जो मौज है वो थोड़े दिन रहती है। कई खाने पीने वाले लोग बिस्तरों पे पड़े हैं, कई हॉस्पिटल्स में पड़े हैं, और कईयों की मौज पूरी तरह नष्ट हो गई है जब उनके मन को निगेटिविटी ने घेर लिया है। इसलिए इसका एक यथार्थ अर्थ हमें ले लेना चाहिए और निश्चित रूप से कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
जी,
इस संसार में हम कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिनको थोड़ी परिश्रम से ज्यादा सफलता मिलती है, कुछ ऐसे भी दिखाई देते हैं जो भाग्य के धनी होते हैं और बिल्कुल टच करेंगे और सोना प्राप्त हो जाएगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मेहनत से अपने महान लक्ष्य को, चरम लक्ष्य को पाया होता है। तो न हम भाग्य के भरोसे रहें और न हम ये इंतजार करें कि थोड़ी मेहनत से हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। हम दृढ़तापूर्वक, बिल्कुल ईमानदारी से अपने लक्ष्य को सामने रखते मेहनत करें तो निश्चित रूप से भाग्य भी हमारा साथ देगा और हम मंजिल पर अवश्य पहुंचेंगे।
कई लोग ब्रदर जी कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर लक्ष्य का निर्धारण किया कब जाए, जैसे कि कुछ सोचते हैं कि भाई हम इस समय तक बना लें, और जैसे बात हमारी चल रही है कि युवा काल ज्यादातर ये सोचते हैं कि ये तो समय है खेलने का, कूदने का, नाचने का, गाने का, बाद में देखा जाएगा। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि कब अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए ताकि हमारी पूरी शक्तियां उसे प्राप्त करने में लगे?
हाँ, देखिए, बात ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि जब बच्चे छोटे हैं, हम तो ये कहेंगे कि दसवीं तक पहुंचते पहुंचते उनके सामने एक सुंदर लक्ष्य होना चाहिए, परंतु जैसा हम अपने संपूर्ण समाज की व्यवस्था देखते हैं उसमें कई बातें देखने में आ रही हैं। कुछ बच्चे गांव से आते हैं जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते, जिनका जो आसपास का परिवेश है उसमें उन्हें कोई ये बताने वाला नहीं होता कि तुम्हारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए। वो ग्यारहवीं में गए, उनके साथी जो सब्जेक्ट ले रहे हैं उन्होंने भी वही ले लिया, भले ही वो आगे चल के सोचते रहे अरे तुम्हें तो इंजीनियर बनना था, तुमने कॉमर्स ले ली। कोई फिर ऐसा करते हैं साइंस सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि कॉमर्स वालों का स्कोप बहुत अच्छा है, उन्हें अच्छी अच्छी नौकरियां मिल रही हैं, तो वो फिर पछताते रहते हैं,
इसलिए
चेंज करते रहते हैं। इसलिए एक तो ये चीज देखने में आती है कि जहां पढ़े लिखे माँ बाप हैं और परिवेश ऐसा है जो पहले से ही लक्ष्य के बारे में बच्चों को जानकारी देते हैं, ये भी है। लेकिन इसमें एक बात कभी कभी ये कंट्रोडिक्शन हो जाता है कि माँ बाप अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं और बच्चों की रुचि कुछ और बनने की होती है। यहाँ जो कंट्रोडिक्शन होता है, एक विरोधाभास हो जाता है। अब मान लो बच्चे माँ बाप के आज्ञा अनुसार वो अपने माँ बाप को खुश करना चाहते हैं कि भाई माँ बाप पैसा खर्च कर रहे हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनकी इच्छा है मेरा ये लड़का डॉक्टर ही बने और वो बिल्कुल उसके लिए जोर लगा रहे हैं, लेकिन बच्चे की रुचि कुछ और है
जी।
अब वो और सब्जेक्ट लेना चाहता है, मान लो वो सीए बनना चाहता है, मान लो वो एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, तो यहाँ भी एक संघर्ष होता है लक्ष्य के निर्धारण में।
तो ज्यादातर ऐसी स्थिति में क्या करें भ्राता जी? और मैं समझता हूँ आम तौर पे 10 में से यदि 8 परिवार को देखा जाए तो ये सिचुएशन तो आती ही होगी कि पेरेंट्स जो उनकी इच्छा रही हो और वो ना कर पाए हो तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे वो पूरा करें, लेकिन बच्चों की इच्छा, रुचि, योग्यता, इन सब चीजों को वो शायद नहीं देख पाते या समझ पाते, तो
और
क्या
किया भी दूसरी तरफ से भी होता है कि मान लो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, उसने देखा है डॉक्टरों की बहुत कमाई है, डॉक्टरों का बड़ा मान है, या डॉक्टर दूसरों को सुख भी बहुत दे रहे हैं, उसकी इच्छा मैं भी दूसरों की पीड़ा समाप्त करके सबको सुख दूं, समाज में मेरा नाम भी हो, वो अपनी ये इच्छा रखता है, ये लक्ष्य बनाना चाहता है। लेकिन माँ बाप आर्थिक दृष्टि से उतने सक्षम नहीं है। अभी आजकल मेडिकल के लिए बहुत पैसा चाहिए, पहले डोनेशन ही 25-25 लाख चाहिए। अब वो ये भी सोचता है कि क्या मैं अपने बच्चों अपने माँ बाप को गरीबी में छोड़कर डॉक्टर बन जाऊं, या मैं आयुर्वेद की ओर चला जाऊं, डॉक्टरी बनना है तो होम्योपैथी ले लूं। अब यहां भी उसके मन में एक संघर्ष रहता है। आखिर इस सब में एक मिलन, एक हार्मनी लानी ही पड़ेगी, और उसका तरीका यह है कि दोनों मिल बैठकर इस पर चर्चा करें, जहां माँ बाप को भी कठिनाई ना हो आर्थिक दृष्टि से, और जो माँ बाप की इच्छाएं हैं वो बच्चों पे थोपी भी ना जाएं, और बच्चों के जो स्वतंत्र विचार हैं, जो उनकी रुचि है, जो कुछ वो बनना चाहते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं दमन न हो और वो एक स्वतंत्र परिवेश प्राप्त कर सकें, तो दोनों को आपस में बैठकर इस पर चर्चा करनी चाहिए।
बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही, जब तक ये जो एक गैप है वो दूर नहीं होगा तो वो बच्चा भी परेशान होता रहता है और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं परेशान होते रहते हैं। और यदि ये हो तो एक सुंदर लक्ष्य, और वैसे भी लक्ष्य का निर्धारण यदि बच्चे करते हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके जरूर इस विषय को चर्चा करनी चाहिए कि किस प्रकार से मैं आगे बढ़ सकता हूं या क्या क्या मेरे लिए स्कोप हो सकता है, तो एक बहुत अच्छी बात होगी। भ्राता जी एक चीज इसके साथ मैं पूछना चाहता था आपसे, कई बार ये होता है कि युवा वर्ग या पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एक लक्ष्य तो निर्धारित कर देते हैं, लेकिन जैसे ही लक्ष्य के पथ पे चलने की बात आती है तो बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, तो ये भी एक कारण बन जाता है कि बार बार व्यक्ति लक्ष्य बनाने से भय खाने लगता है कि मैं लक्ष्य बनाता हूं और मुझे वो प्राप्त नहीं होता है।
इसलिए मैंने कहा कि बच्चे की रुचि का ध्यान रखना परम आवश्यक है। मान लो वो कॉमर्स में बहुत होशियार है, उसकी रुचि उधर जा रही है, और मान लो माँ बाप उसे एक अच्छा इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उसके और लोग भी बहुत इंजीनियर हैं और पहले से उन्होंने भी ड्रीम्स देखे हैं कि हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन बच्चा बहुत रुचि ले रहा है कॉमर्स के सब्जेक्ट में, तो यहाँ माँ बाप को इस समझदारी का परिचय देना चाहिए कि वो फील्ड भी बहुत सुंदर है। अब क्योंकि जीवन बच्चे का है, माँ बाप का नहीं, जो लक्ष्य बनाएगा बच्चा उसका बुरा इफेक्ट या अच्छा इफेक्ट उसके भावी जीवन पर आने वाला है, इसलिए बच्चे की हर क्षमता को समझते हुए, उसकी रुचि को समझते हुए, उसकी च्वाइस को प्रथम स्थान देना चाहिए।
जी प्रताप जी, ये तो हो गई एक उनके परीक्षा से जुड़ी हुई बात कह लीजिए या फिर सब्जेक्ट से जुड़ी हुई बात कह लीजिए, लेकिन लक्ष्य की जहां तक बात आती है युवा वर्ग को यदि हम लेते हैं तो केवल यही तो एक लक्ष्य नहीं है कि हमें पढ़ाई ही पढ़नी है या पढ़ाई में ही एक लक्ष्य बनाना है, इसके इतर या इसके अलावा क्या ध्येय पूरे जीवन के लिए होना चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास।
बिल्कुल, ये बहुत सुंदर बात है और ये हमारे समाज को और हमारे युवकों को बच्चों को बहुत अच्छी तरह जाननी चाहिए, और इसको मतलब इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं बहुत बच्चे अच्छे डॉक्टर बन गए लेकिन थोड़े दिनों में टेंशन रहने लगी और वो अपने मेडिकल प्रोफेशन को एंजॉय नहीं कर पाए। हमारे सामने ऐसे बच्चे आते हैं कि इंजीनियर बन गए, बहुत हाई परसेंटेज उनकी आ गई, फिर डीआरडीओ में साइंटिस्ट वो बन गए, लेकिन अपने साथियों के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, मिलन हो ही नहीं रहा है तो टेंशन में रहने लगे हैं। और भी कईयों के साथ ऐसा हुआ है कि अभी आयु 30 साल की हुई है और रोगी रहने लगे हैं, उनको इस चीज का पता ही नहीं है। कईयों को कदम कदम पर जब असफलता होने लगी, वहां कंपटीशन का एक युग आ गया उनके सामने, उनके 20 साथी हैं, बहुत जबरदस्त कंपटीशन उनके सामने है, अच्छा उनके बॉस जो हैं उनकी ओर से कहीं अच्छा कहीं बुरा व्यवहार होने लगा, लोग कह देते हैं हमारे बॉस हमें टॉर्चर कर रहे हैं, इन सब को फेस करने के लिए, इन सब में जीवन को एंजॉय करने के लिए, जैसा आपने कहा एजुकेशनल जो हमारा डेस्टिनेशन है, एम ऑब्जेक्ट है, उसके साथ साथ मनुष्य को हेल्थ का ध्यान रखना, उसकी एक जनरल नॉलेज रखना, उसके बारे में केयर रखना पहले से ही, ये भी बहुत आवश्यक है। सोशल लाइफ जिसमें उसको रहना है आगे चलकर, उसे लोगों के संपर्क में आना है, उसके बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे, उनको भी उन्हें प्रसन्न रखना है, उन पर भी उसकी एक बहुत अच्छी छाप हो। इसके साथ साथ जिसकी आजकल बहुत आवश्यकता महसूस हो रही है, स्पिरिचुअलिटी, उसको ये भी पता होना चाहिए तू है कौन, कहां से संसार में आया है, आखिर तेरी इनर पावर कैसे बढ़ेंगी। तो ये सर्वांगीण विकास के लिए हेल्थ वाइज, सोशल वाइज, स्पिरिचुअलिटी के तौर पर मन का विकास, बुद्धि का विकास और एक श्रेष्ठ व्यवहार सीखना, व्यवहारिक होना। कई लोग बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन गए लेकिन व्यवहारिक बिल्कुल नहीं है, वो जानते ही नहीं अपने फ्रेंड से हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए।
मतलब ये हम समझें कि लक्ष्य केवल एजुकेशन के फील्ड की बात नहीं है कि आपको केवल एक चूज करना है कि आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, बल्कि लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे एक संपूर्ण मानव बनना है, मुझे सर्वांगीण विकास अपना करना है, चाहे वो मेंटल फील्ड हो, चाहे स्पिरिचुअल फील्ड हो, सोशल फील्ड हो या फिर अन्य क्षेत्र हो, तो सर्वांगीण विकास को इसमें हम लक्ष्य के रूप में शामिल करें।
बिल्कुल, इसी की महती आवश्यकता है। कई बार मनुष्य केवल धन कमाने को अपना लक्ष्य बना लेता है, धन के पीछे वो कोई गलत काम करने लगता है और उससे दूसरी ओर उसका कैरियर नष्ट ही होने के कगार पर पहुंच जाता है। तो सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण बौद्धिक विकास, सर्वांगीण अवेयरनेस, उसकी नॉलेज रखना, ये संपूर्ण उन्नति के लिए, जीवन को एंजॉय करने के लिए बहुत आवश्यक है।
जी, ये सर्वांगीण विकास की जब बात आती है दाता जी, अब ज्यादातर यूथ अपने कैरियर पे ही फोकस्ड होते हैं कि पहले अपना कैरियर बना लिया जाए जिस भी फील्ड में वो बनाना चाहते हैं, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेकेंडरी हो जाती हैं या नगण्य हो जाती हैं। इन सब चीजों को साथ में लेकर के वो कैसे आगे?
हाँ देखिए, सबको साथ लेकर चला जा सकता है। हेल्थ अच्छी होगी तो पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। मान लो बीमार ही रहने लगे, उनको सर्दी जुकाम रहने लगी, उनको बुखार होने लगा, छोटी बातों पर हम ध्यान दें। या आजकल जो एक बहुत बुरी बीमारी चल रही है, पेट खराब रहने लगा बच्चों का, तो उससे उनकी मेमोरी पावर पर, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता रहेगा। तो एक छोटी छोटी अवेयरनेस, एक जनरल नॉलेज, हम ये नहीं कह रहे उन्हें डॉक्टर बन जाना चाहिए, पर अपनी हेल्थ को कैसे ठीक रखें, क्या खाएं क्या न खाएं, पानी कितना पिए कब न पिए, इसकी अवेयरनेस उनको होनी चाहिए। रही बात स्पिरिचुअलिटी की, ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये तो एक एजुकेशन है, और उसी एजुकेशन के साथ इसको भी जोड़ दिया जाए, इसमें समय नहीं लगता, इसमें कोई अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं होती। ये तो अपनी अवेयरनेस है, ये तो अपने मन के विचारों को शुद्ध रखने की बात है, अपने को एनर्जेटिक रखने की बात है। और तीसरी बात जो है, जो बहुत काम आती है मनुष्य के जीवन में, व्यवहार। मनुष्य को रमणीक भी होना चाहिए तो कहीं गंभीर भी होना चाहिए, उसकी वाणी दूसरों को सुख देने वाली भी होनी चाहिए, जो व्यवहारिक लेवल है मनुष्य का, उसमें भी उसको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं, छोटी बातें जीवन में सीखते रहनी चाहिए। तो ये सब एक साथ आगे बढ़ सकता है।
जी जी जी, मतलब कंप्लीटली यदि वो फोकस्ड है भी अपनी पढ़ाई पे तो अच्छी बात है, लेकिन इन सब पहलुओं पर भी जरूर विचार करके इनको भी विकसित अवश्य करें। तथा जी, जब कभी एक लक्ष्य की बात आती है, ध्येय निर्धारण की बात आती है, तो बहुत सारे जो युवा हैं बड़े लक्ष्यों को बनाने में कई बार हिचकते हैं, तो क्या कारण हो सकता है कि ज्यादातर लोग लक्ष्य निर्धारण नहीं करते? एक मैं आपके सामने आंकड़ा रखना चाहूंगा कि पश्चिमी देशों में एक सर्वे किया गया, तो वहां ये पाया गया कि वो लोग अपने जीवन में सबसे ज्यादा सफल रहे जिन्होंने अपने लक्ष्य का निर्धारण किया था, और लिखित में जिनके पास उनका लक्ष्य था, और उन्होंने ये पाया कि 3% लोग ही थे, एक उन्होंने एक गैदरिंग ली थी, कुछ लोगों को लिया था, उनमें से 3% लोगों के पास ही उनका लिखित लक्ष्य था, और 10 साल बाद उन्होंने देखा कि यही 3% लोग समाज में, संसार में सफल हैं, बाकी के लोग सफल नहीं हैं। तो ये आंकड़े ये बताते हैं कि लक्ष्य इतना इंपॉर्टेंट है, फिर भी ज्यादातर युवा अपने पास लक्ष्य का एक लिखित स्वरूप क्यों नहीं रखता या लक्ष्य बनाने में हिचकता क्यों?
हाँ देखिए, जैसे मैं 2-3 फील्ड लूं, IAS करना, IPS करना
जी,
जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है हमारे देश में
जी।
दूसरा एक इंजीनियरिंग का फील्ड है बहुत अच्छा
जी।
एक मेडिकल का फील्ड है, एक CA कॉमर्स अकाउंट्स ये फील्ड है
जी।
बिजनेस का फील्ड है, MBA कई लोग करते हैं। अब कई लोगों के पास क्या है, उनका फ्रेंड सर्किल ऐसा होता है जो उन्हें कहता रहता है, अरे तुम इंजीनियरिंग करोगे नौकरी तो मिलनी नहीं है, कहां से इतना मेहनत करोगे, इतना पैसा खर्च करोगे, छोड़ो इस फील्ड को। IAS, अरे लाखों कैंडिडेट बैठते हैं हर एग्जाम में, उनमें से थोड़े से 200-250 का सिलेक्शन होगा, तुम्हारा कहां नंबर आने वाला है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसे ऐसे जो निगेटिव अप्रोच मनुष्य को, बच्चों को मिलती है, उससे कहीं ना कहीं बच्चे अपना लक्ष्य ठीक से निर्धारित करते नहीं है। लेकिन हम ये, मैं उनको राय दूंगा कि बच्चे इस तरह सोचें कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं बच्चे, बहुतों को तो सुंदर नौकरी मिल रही है, उनमें से मैं भी एक हूंगा। मेडिकल कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं, सफल डॉक्टर बन रहे हैं, मैं भी सफल डॉक्टर बनूंगा। IAS IPS के लिए कैंडिडेट्स जा रहे हैं, मैं उस फील्ड में भी संपूर्ण सफलता को प्राप्त करूंगा। ठीक है, पैसा नहीं है, उसका भी इंतजाम कहीं ना कहीं से अवश्य हो जाएगा। तो ऐसी दृढ़ता के साथ अगर वो चलेंगे तो निश्चित रूप से अपना लक्ष्य लिखेंगे, उसको निर्धारित करेंगे।
अपने अंदर मतलब नेगेटिविटी नहीं आने दें। ज्यादातर ये हो रहा है कि लोगों ने कुछ कह दिया, कोई बात उनके अंदर डाल दी कि इतनी कंपटीशन है, इतने सारे लोग दे रहे हैं, तुम्हारे पास वो क्षमता या योग्यता नहीं है, तुम कंपटीशन में खड़े नहीं हो पाओगे, तो अपने अंदर वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ले आता है और पीछे हट जाता है। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी लाई एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात
बस यही है कि अगर लाखों कैंडिडेट IAS IPS के लिए बैठ रहे हैं, उनमें से 250 चुन रहे हैं, तो उसको पहला विचार ये होना चाहिए उसमें से एक नंबर मेरा भी होगा।
बिल्कुल,
ऐसी दृढ़ता जब होगी तो जैसे मैंने कहा, ब्रेन की, सबकॉन्शियस माइंड की और यूनिवर्स की समस्त शक्तियां उसको कोऑपरेट करने लगेंगी। और अगर पहले ही निगेटिव हो गए हैं तो निगेटिव एनर्जी उसके पास आने लगेगी और उसके मन में निराशा भरने लगेगी और वो यही सोचेगा नौकरी तो मिलेगी नहीं।
बिल्कुल भ्राता जी, एक बहुत सुंदर बात आपने कही है कि निगेटिविटी ना आने दें, क्योंकि यदि ये है तो सफलता उनसे बहुत दूर चली जाएगी। भ्राता जी, आज बहुत अच्छी चर्चा रही है युवाओं के बारे में और उनके लक्ष्य के निर्धारण के बारे में। ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। आज आपने जो सुंदर बातें हम सबके सामने रखी हैं, युवाओं के सामने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युवा मित्रों, आपने देखा कि जीवन में लक्ष्य कितना महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। जब तक लक्ष्य नहीं होगा हमारे जीवन में, तब तक सफलता का स्वाद हम नहीं चख सकेंगे, सफलता हमसे कोसों दूर रहेगी। इसलिए आप ठान लें कि मैं अपने जीवन में एक लक्ष्य अवश्य निर्धारित करूंगा और उस लक्ष्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम करूंगा। एक निश्चित रूप से अपने पास एक लक्ष्य बना करके उस लक्ष्य पे तेजी से मैं आगे बढ़ूंगा। तो आज आपने लक्ष्य के विषय में सुना है, इस सुंदर विषय को हम आगे भी जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।